ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੇਰਾ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਹੀ georgebrown.ca ਤੇ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ $1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 6472903773 ਯਾਨੀ 6472903773।
ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੇ ਫਲ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀ ਅੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ। ਭੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕਾਰਪੁਰੋ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 200 ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਸਕਾਰਪੋਰੋ ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡਨ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਫੋਨ 416-264-3111।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸ਼ਿਰਾਜ ਸ਼ਫੀਕ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ। ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਹੋ ਯਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼, ਸਭੀ ਕੇ ਲਿਏ ਸ਼ਿਰਾਜ ਸ਼ਫੀਕ 416-502-8000। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਓਨਡ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਡ।
ਆਹਾ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਰੋਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਮ ਐਡਰੈਸ ਐਲਈਡੀ ਸਾਈਨ।
ਕਿਤਾਬ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾ ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਚੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜਬ ਰਾਤ ਉਤਰੇ ਤੋ ਐਲਈਡੀ ਸਾਈਨ ਆਪਕੇ ਘਰ ਕੇ ਨਾਮ ਔਰ ਨੰਬਰ ਕੋ ਚਮਕਾ ਦੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਿਏ ਐਲਈਡੀ ਸਾਈਨਸ ਕੇ ਲਿਏ ਯੂਨੀਕ ਸਾਈਨਸ ਕੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ 6475274482 6475274482। प्रोग्राम का रेफरेंस देना मत भूलिएगा।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। केटरिंग स्पेशल 8 आइटम्स फॉर जस्ट 999, मिनिमम 30 पीपल्स। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। पैराडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर। वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की 2 लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसिसागा 4167579999 स्कारब्रो।
ITN Food Corporation, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक आपके और हमारे किचन की हर जरूरत। एथनिक स्टोर्स के अलावा लॉबलॉज, वॉलमार्ट, सोबीज, फ्रेशको, फूड बेसिक्स एंड मेट्रो, आपको ITN की प्रोडक्ट्स पिक कीजिएगा। देसी मसाला जात के लिए अशोक का, देसी शान की प्रोडक्ट्स ITN, मीनार की प्रोडक्ट्स लीजिएगा, पांच दरिया, डायमंड, बेहतरीन क्लासिक राइस। ITN, आपका अपना ब्रांड, आपके किचन की हर जरूरत पूरी करते हैं।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
اسلامک فاؤنڈیشن آف ٹورانٹو سالہ سال سے کمیونٹی کی خدمات کرتا چلا آ رہا ہے. یہاں پر کمیونٹی کے لیے مختلف سروسز دی جاتی ہیں، جیسا کہ میت اور تدفین، ضرورت مندوں کے لیے فوڈ کی تقسیم، نکاح، مشاورتی خدمات، فل ٹائم حفظ پروگرام، ایوننگ کلاسز، سنڈے اسلامک اسکول، سینئرز پروگرام، روحانی اور مذہبی سیمینار. اسلامک فاؤنڈیشن آف ٹورانٹو کے اخراجات آپ کے دیے ہوئے ڈونیشن سے پورے ہوتے ہیں. انہیں آپ کے ڈونیشن کی ضرورت ہے، ڈونیشن کے لیے کال کیجیے 416-321-0909 یا وزٹ کیجیے www.islamicfoundation.ca. عدنان الوی، پریزیڈنٹ لائف ٹائم گروپ. عدنان الوی کو کون نہیں جانتا؟ آپ پچھلے 15 سالوں سے اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنی انکم اور اپنی ویلتھ کو انکریز کیا جا سکتا ہے. آپ کے لیے ہمیشہ یونیک اور انوویٹو انویسٹمنٹ آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. اگر آپ آج کی بدلتی ہوئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو زیادہ سیکیور رکھتے ہوئے میکسیمم پروفٹ بنائیں، تو آج عدنان الوی سے رابطہ کریں 416-301-0249.
اگر آپ پاکستانی نائکاپ یا پاکستانی پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کو لگوانا ہے ویزا، ایک ہی نام یاد رکھیں، الحبیب ٹریول. عمرہ پیکج ہو یا عمرہ کے دوران مکہ اور مدینہ میں ہوٹل کی بکنگز، الحبیب ٹریول مارکیٹ اور آن لائن بکنگ سے بہتر ریٹس فراہم کرتے ہیں گارنٹی کے ساتھ. آج ہی کال کیجیے الحبیب ٹریول کے شہزاد حبیب کو 416-710-1549. اوپن 7 days a week. الحبیب ٹریول، 2860 ڈینیسن اسٹریٹ، مارکم.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ.
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, 3-piece ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton. Ya call karo 905-450-2828. 905-450-2828.
کیا آپ یا آپ کی فیملی ڈیتھ، ڈسبلٹی یا کریٹیکل النس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو سن لائف کی پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا 416-894-5872.
جی ہاں، صلاح مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں.
ٹرسٹ وردی آنےسٹ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر اینڈ کینیڈین ہیلتھ اسپیشلسٹ مسٹر پردیپ فرام سن لائف 416-894-5872.
اور ہر ٹیوزڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل ہوں.
جی سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے، خوش و خرم و صحت مند ہوں گے. بھائی ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آج بھی. کب تک رہے گا؟ 6:15 تک ویسے ہی ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر 24 آورز آپ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. www.eawaz.com پہ جائیے. آپ کو دیکھنا ہو تو واچ لائف، ویری ایزی، اینڈ اگر آپ نے سننا ہو تو لسن لائف، یا 647-872-4900 نمبر تو یاد ہو گیا ہوگا آپ کو.
872-4900 पे आप अभी भी डायल कर रहे एंड यू आर विद अस, आपका फोन कॉल भी मिस नहीं होगा। जैसे फोन आएगा आपका तो आप फोन अटेंड कर सकते हैं, उसके फौरी बाद आप हमारा प्रोग्राम सुनने लगेंगे। तो वी हैव मेड इट वेरी इजी फॉर यू टू लिसन टू अस ऑल द टाइम। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल का मतलब हो गया कि 23वां रोजा, बात करूंगा 22वां भी है मगर 23वां रोजा। और आज अफ्तार का टाइम बताता चलू मैं आपको, 7:45 पर, 7:45 पे आज हम अफ्तार करेंगे। और कल सुबह सुहूर का आखिरी वक्त जो है 5:34। ये टाइमिंग्स जो है मैं आपको जो बता रहा हूं ये इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो की टाइमिंग्स है। अगर आप टोरंटो से बाहर रहते हो तो आप अपनी करीबी मस्जिद से के टाइमिंग के लिहाज से आप रफ्तार और सुहूर कीजिएगा। अगर आपका ताल्लुक अहले तशी से है तो साहब आपका आज का रोजा जो है वो खुलेगा 8 बजे, 8 o'clock, 8 o'clock आपका आज रोजा खुलेगा। एंड कल सुबह सुहूर का आखिरी टाइम आपके लिए 5:23, 5:23 पे। अगेन रमजान की आज 23 तारीख हो गई जी साहब। साजो आवाज का प्रोग्राम और डिफरेंट प्रोग्राम्स आप सुनना शुरू करते हैं सुबह 7 बजे से, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप सुनते हैं करंट अफेयर्स विद रमनजीत, 9 से लेकर 12 बजे तक साउथ एशियन पल्स विद यदवीर जसपाल, और 1 से लेकर 2 बजे तक रौनक पंजाब दी सोडी नागरा पेश करते हैं आपके लिए, 2 से लेकर 3 बजे तक नगारा रेडियो, आज जनाब चरणजीत बरार ने आपके लिए प्रोग्राम पेश किया। वैसे चरणजीत बरार एंड राणा सिद्धू साहब ये प्रोग्राम पेश करते हैं आपके लिए नगारा रेडियो 5 days a week 2 से लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे से ऑनवर्ड हम आपके साथ होते हैं। यहां पर साजो आवाज आरफा जी स्टूडियो पहुंच चुकी है, बहुत जल्द हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। और बस यही समझ लीजिए कि ये जो है इसी तरह हम आपके साथ रहेंगे। अब अगर आपके पाकिस्तान पैसे भिजवाने हो तो साहब मेगा मनी एक्सचेंज का नाम याद रखें, मिस्टर और मिसेस शबाहत यहां पर होते हैं, वेरी डिपेंडेबल ऑन टाइम। अगर आपको पैसे भिजवाने हो तो मेगा मनी एक्सचेंज के मिस्टर और मिसेस शबाहत का नंबर है 905-279-4754, इनका फोन नंबर है। और साहब इसके साथ साथ यही बता चलूं आपको कि आज अगर आप कनाडा से पाकिस्तान पैसे भिजवाएंगे तो आपको 1 कैनेडियन डॉलर का मिलेगा 207 रूपये, खरे खरे 207 रूपये आपको मिलेंगे मेगा मनी एक्सचेंज मिस्टर मिसेस शपाहत 905-279-4754 इनका फोन नंबर है। ये तो बातचीत हो गई, अब से लेके आखिरी वक्त तक हमने क्या करना है आपके साथ, और खूबसूरत कलाम की तरफ भी आपको लिए चलेंगे हम, मगर पहले आपको मैं मौसम का तो आज मेन टॉपिक ही मौसम का है साहब। आप मौसम को देख लीजिए, इस वक्त हमारे मोहल्ले में +6 degrees टेम्परेचर है। आज दोपहर को 10 degrees तक अभी गया था और फिर आज शाम होते होते +5, अभी +5 है, और आज रात को -3 degrees टेम्परेचर, और कल सुबह जो है +2 degrees टेम्परेचर, पार्टली क्लाउडी पार्टली सनी होगा। कल दोपहर को साफ 6 टेम्परेचर होगा, थर्सडे को 3 degrees टेम्परेचर होगा, फ्राइडे को 5 degrees एंड सैटरडे को 8 degrees। मगर देयर इज अ मगर, अगर के साथ मगर भी होता है, मगर का क्या है, एनवायरमेंट कैनेडा ने आज एक स्पेशल स्टेटमेंट इश्यू किया है, और अकॉर्डिंग टू दैट जो आप बारिशें देख रहे हैं तो यू आर लुकिंग एट अराउंड समवेयर क्लोज टू 50, इट कुड रीच 50 millimeters of rain, 60 kilometers per hour wind. अगर आप बाहर निकले, अभी बाहर निकल के देखिए, अच्छी खासी विंड है साहब। Continued with 5 to 15 centimeters of स्नो यस, जिन्होंने अपने टायर नहीं निकाले हैं वो खुशकिस्मत हैं अभी, क्योंकि अगर आपने जल्दी में आके अपने स्नो टायर्स निकाल लिए हों तो सब इसका मतलब समझ लीजिए आपके आप जो है मुश्किल में पड़ सकते हैं। मगर आपने अगर किसी बड़ों की बात सुनी हो और अभी अपने अपने टायर्स लगा के रखे हुए हों तो साहब आप यू आर वन ऑफ द लकी पर्सन एंड तो 5 to 15 सेंटीमीटर्स ऑफ स्नो आपको मिलेगी। एंड यहां पर टोरंटो पुलिस ने साहब एक अरेस्ट किया है 26-year-old, बहुत खूबसूरत खातून है ये 26-year-old खातून लरीजा लोपेज, इन्होंने जो है अंडर $5,000 का फ्रॉड किया है। आपको पता है कि रेंटल की मार्केट वेरी टाइट, इट इज वेरी टाइट रेंटल मार्केट इन स्पेशली इन टोरंटो, इट इज सो टाइट। तो वो जो है इन्होंने लरीजा लोपेज ने क्या किया कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे एडवर्टाइज किया ऑफ कोर्स अपार्टमेंट्स फॉर रेंट एंड उसके बाद उन्होंने जो है उसको सिक्योर करने के लिए कुछ डिपॉजिट मांगा एंड पीपल हु आर डेस्परेट इन गेटिंग दैट सो दे गिव द डिपॉजिट टू देम एंड वंस दे गिव द डिपॉजिट 8 लोगों की तो अभी तक खबर है 8 पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर दिया। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, आप अगर तस्वीर दिखा सकते हो तस्वीर दिखाओ यार, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड 26-year-old somebody you can trust and sub that deposit is gone anyway. आपने अगर ऑल स्टेट से अगर इंश्योरेंस लेनी हो घर की और गाड़ियों की तो साहब हम आपको नाम बताते हैं राजा बादशाह जी का। राजा बादशाह जी आप कहते हैं कि अगर आपके पास एक घर दो गाड़ियां हो तो ये $1,775 की सेविंग करके देंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास दो गाड़ियां नहीं है और एक घर नहीं है, वट एवर इट इज, आपको घर की और उसकी जब चाहिए होगी तो आप उसमें इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6472903773 इनका फोन नंबर है।
जी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। आज 22वां रोजा है और आज की अफ्तार का टाइम यकीनन हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ कि अफ्तारी के लिए जो है आपने फिकाए, हाँ जी
मैंने अनाउंस कर दिया, आज 23 रोजा जो लोगों ने पहले रोजा रखा 23rd रोजा है उनका April 2nd। आज अफ्तार का टाइम 7:45 पर 7:45 और कल सुबह आपका सुहूर का आखिरी वक्त जो होगा 5:34 पे होगा। और अगर आपका ताल्लुक अहले तशी से है तो आज आपका अफ्तार जो है वो 8 बजे 8 o'clock पे आपका जो है अफ्तार होगा और कल सुबह आपका सुहूर का आखिरी वक्त 5:23।
बहुत शुक्रिया माजी जमाल साहब, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए, आमीन। यह आखिरी अशरा है रमजान का और आज मैं बड़ी खूबसूरत एक चीज पढ़ रही थी, वैसे कितना दिल को सुकून कितना है आपके दिल को। इंसान बाज़ औक़ात जब आप सदका ज़कात करते हैं तो एक जो सेटिस्फेक्शन नजर होती है वो महसूस कराती है कि मैंने सही अल्लाह के नाम पे दिया। इसी तरह सेटिस्फेक्शन के दिल को क्या मुतमईन है कि मैं क्या रमजान में जो मेरा हक था या मेरा फर्ज था मैं उसको अदा कर पाया कर पाई कि नहीं कर पाई। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला करे कि आजकल बेख्तियार वो याद आती है, मैं मुझे एक लतीफा भी बल्कि याद आता होता है जब मैं वो दुआ करती हूँ, कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अफ़ुन तुहिब्बुल अफ़ाफ़ूनी, अल्लाह ताला मैं तेरी से तौबा चाहती हूँ और तू तौबा करने वाले को पसंद करता है। तो
इन्ना का अफ़ुन
बेशक अल्लाह ताला अफ़ुन तुहिब्बुल अफ़ा, अल्लाह मियां आप माफ करने वाले हैं, तुहिब्बुल अफ़ा माफी को पसंद फरमाते हैं, फाफूनी और मुझे माफ कर दीजिएगा। तो बेख्तियार आजकल अल्लाह मियां इन्ना का अफ़ुन तुहिब्बुल अफ़ा सजदे में जाएं तो ये حصہ ہوتا ہے. تو مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آیا, وہ ایک بچہ تھا نا, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا گڑی مانگ رہا تھا, پیزا مانگ رہا تھا. ماں نے کہا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوتے, کہتا آپ کے گناہ ہوں گے, آپ گناہوں کی معافی مانگیں, مجھے جو چیزیں چاہیے میرا اپنا ریلیشن ہے میں وہ مانگوں گا. بہرحال اللہم انا کا فون تو حب الفا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, مجھے معاف فرمائیے گا. آمین سم آمین. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں میرے دو معزز مہمان ہیں, جناب جلیل الرحمان صاحب, ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا, اور اس کے ساتھ جناب ملک داؤد صاحب. ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, مائی ویلکم بوتھ آف یو ان مائی اسٹوڈیو. میاں داؤد صاحب, ملک داؤد صاحب, ملک, وہ ملک ریاض ملک کے بعد کچھ آنکھوں میں پھبتا ہی نہیں ہے, اور ریاض ملک صاحب نے بھی جرنلسٹ کو پلاٹس دیے ہوئے ہیں, ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں, مگر آج کل ریاض ملک بھی نظروں سے غائب ہے. اینی ویز, میاں داؤد صاحب میرے ساتھ ہیں, جناب جلیل الرحمان صاحب میرے ساتھ ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں رات کا وقت ہے اور افطاری اور سحری کے درمیان کا وقت ہے. سر ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. سب سے بڑی بات ہے جلیل بھائی, تسی تو ہے گئی بہت پیارے ہو, مگر میاں صاحب نے جو شامل ہو گئے نا, میاں صاحب کا نام آج کے بعد میں نے چیتا ڈال دیا. میاں صاحب بہت شکریہ.
مہربانی ابا جی,
کیونکہ آج کل نا ہم, اگر میں پاکستان کی بات کرتی ہوں تو لوگ فوری طور پہ چھاپ لگا دیتے ہیں, اے عمران خان نے نال ہے اس کر کے. بھائی فیکٹس آر فیکٹس. میں جب پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ, میں انہی چیزوں کو چیخا کرتی ہوتی تھی, اور آج آپ دیکھیے گا آپ کے چھ ججز نے بول دیا, مگر میں یہ کہتی تھی. آج میرے پاس ایک رپورٹ آئی کہ ایوب خان, قائد اعظم محمد علی جناح نے ایوب خان کو ریجیکٹ کیا تھا, ہی وانٹیڈ ٹو پوسٹ ہم ایز اے پنشمنٹ ٹو ڈھاکہ, مگر پھر ایوب خان صاحب جو ہیں ان کو لیاقت علی خان اپنے قریب لے آئے ہیں. بیکاز دا ڈے پاکستان بنا, ہماری قوم میں ہمیشہ سے دو دھڑے رہے, ہمیشہ سے دو دھڑے رہے. محترمہ فاطمہ جناح کے لیے وہی بات ہے, میں پرانی لائن پیٹنے والی بات بعض لوگ سمجھیں گے. لیاقت علی خان کے بارے میں دیکھ لیجئے گا, ایک دھڑا ادھر بن گیا تھا, ایک دھڑا ادھر. ایوب خان اس سے پہلے میں نے ذکر کر دیا آپ کے ساتھ, لیاقت علی خان, پھر محترمہ فاطمہ جناح. اور ہمیشہ لوگوں نے اپنی فیورز دیکھی, ملک کا خیال کہیں بھی نہیں کیا. آج جو پاکستان کی صورتحال ہے, آپ امیجن کیجئے گا, آسمہ جہانگیر وہ شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے بڑے دل کے ساتھ کہا تھا یہ بوٹوں کو چاٹتے ہیں, بوٹوں کا ذکر. میاں صاحب اور جلیل صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہی, سب سے پہلے کسی نے لاؤڈلی بات کی تھی آرمی کی اور آرمی کی انٹرفیئرنس کی, تو دیٹ واز آپ کی آسمہ جہانگیر صاحب, از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟
بالکل.
اور آج آپ دیکھ لیجیے گا جو میں ابھی بات کرتی آ رہی ہوں کہ قوم از آلویز ڈیوائڈیڈ ان ٹو پولز, آج آسمہ جہانگیر کا دھڑا جو ہے وہ ان کے گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا ہے, اور حامد علی کا دھڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ. باقی ایم آئی رائٹ اور رانگ؟
نہیں, یہ دھڑے کی بات نہیں ہے, وہ دھڑے کی وجہ سے جا کر ساتھ نہیں بیٹھے. آسمہ جہانگیر صاحبہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اور اس مرتبہ بھی انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ غلط بات ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ یا ان کا گروپ جو ہے وہ آج کے جھوٹ کو سپورٹ کرے, کیونکہ ان کے مطابق آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ایک سازش کا حصہ بن کر ایک جماعت کا بیانیہ بنانے کے لیے ایک جھوٹی سازش کا حصہ بنے ہیں, بالکل ویسی ہی سازش جس کا ابھی ثبوت جو ہے وہ ماضی قریب میں ثاقب نثار کی شکل میں, عظمت سعید کی شکل میں, بندیال کی شکل میں, مظاہر نقوی کی شکل میں, اعجاز افضل خان کی شکل میں دیکھ چکے ہیں. تو جب جج صاحبان خود جھوٹ بول رہے ہوں اور وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ دینا چاہیے. جو دوسرا ایشو اصل ایشو ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی انتظامیہ کے اندر, عدلیہ کے اندر, سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے, تو وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس بات کی آڑ کے اندر آ کر آپ ملک ریاض کے ٹاؤٹ ججوں کو سپورٹ کرنا کر دیں شروع کر دیں, آپ عمران خان کے ٹاؤٹ ججوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, آپ اس ملک میں جو کرپٹ ججز کا مافیا ہے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک ایشو کی آڑ کے اندر کسی غلط چیز کو ہے وہ سپورٹ کرنی چاہیے. غلط چیز اپنی بنیاد میں, اپنی پیدائش میں اور اپنے مستقبل میں غلط ہے, تو وہ ہمیشہ سے غلط ہے. میرا اتنا
بہت شکریہ سر. آپ نے جو اتنی بات کی میاں صاحب یہی تو کنفیوژن, آپ لوگ کنفیوژن میں یا آئی ڈونٹ نو کون کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. چھ ججز نے جو لیٹر لکھا اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ایڈریس کیا, ٹھیک ہے. اب یہاں عمران خان اور نواز شریف ہم ہر چیز میں ڈویژن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں.
میرا بڑا آپ سے سادہ سا سوال ہے,
میں سب کی جگہ میرا سوال سن لو, میرا سوال سن لو پھر. میں تو بچہ نالائق سا انسان ہوں, میں تو عام کہہ رہی ہوں, میرے تو کنسرن ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ قانون کی پیچیدگیاں آپ جانتے ہیں. سپریم کورٹ کو ان ججز نے ایڈریس کیا ہے, چارج شیٹ حکومت اور انٹیلیجنس کے خلاف ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب الٹیمیٹلی بلا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر کو, اور الٹیمیٹلی جس کے خلاف چارج شیٹ ہے آپ نے کیس انہیں کے سپرد کر دیا. اچھا آپ نے کہا کہ آسمان جہانگیر صاحبہ, بالکل میں مانتی ہوں, اور میں آسمان جہانگیر صاحبہ نے ہمیشہ بڑے لاؤڈلی اس زمانے میں جب کوئی انٹیلیجنس کے بارے میں اتنا کھل کے بول بھی نہیں سکتا تھا, شی واز دا پرسن ہو اسپوک اسٹرانگلی. آج لیٹر میں ہے کیا؟ لیٹر میں یہی ہے نا کہ فلانے بندے کو میرے بہنوئی کو اٹھا لیا گیا, ہمارے گھروں کے بیچ میں سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے تھے جس کے بیچ میں چپس بھی لگی ہوئی تھی. سر اس میں آپ جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے, وہ عمران خان کے چکر میں آپ اس کو بے شک جھوٹ بنا لیں, مگر یہ جھوٹ تو نہیں. اتنی ننگی
جواب دینے کی
میرے سوالات, میرا اس سوال سے لنک سوال ہے کہ کتنی ننگی ویڈیوز آپ نے دیکھی پچھلے سال, یعنی ہر آدمی کی عزت کو سڑک کے اوپر لا کے رول کے رکھ دیا.
مجھے جواب تو دے لینے دینا جی, اب آپ آگے تبصرہ کرنی شروع کر دیتے ہیں.
نہیں میری جان, میرے سارے سوال ہیں. اب آپ
نہیں میری بات سنیں نا, ایسی بات نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھ ججوں نے جو خط لکھا وہ 2023 کی ایک انٹرفیئرنس کے بارے میں لکھا. اب جب ہم جج صاحبان کو مسیحا سمجھ کر, ان کو آئیڈیل سمجھ کر لے کر چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم قوم کو کنفیوز کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے سب کو سچ بتانا, کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کا اختیار ہے. یہ تنازع شروع ہوتا ہے جب ٹیرین وائٹ کا ایک کیس وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا. 9 مئی کو عمران خان صاحب جو ہیں
پاکستان میں, اگر آپ ایمانداری سے آ جائیں نا, بندے کے ایکسٹرا افیئرز ہیں, پتہ نہیں کتنوں کی کتنی بیٹیاں سڑکوں پہ چلی پھرتی ہیں آپ کے سو کالڈ.
آپ اس میں میرے آپ مجھے ایک منٹ چاہیے اس میں.
9 مئی کو, اس سے پہلے اس کا فیصلہ ریزرو ہو چکا تھا. 9 مئی کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں. اب جو یہ جو موجودہ چھ جج صاحب ہیں, ان میں ایک جج صاحب تھے محسن اختر کینی صاحب جو اس بینچ کا حصہ تھے, وہ بار بار رجسٹرار آفس کو اس دن کیوں انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ تم آج 9 مئی والے دن ہی یہ فیصلہ جو ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر, اپنی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ پبلک کرو, تاکہ وہ ہم مسترد کر چکے ہیں درخواست, تو اس کی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملے. وہ فیصلہ کل بھی آ سکتا تھا, وہ 10 دن پہلے بھی آ سکتا تھا, اس کے لیے 15 دن پہلے بھی لکھا جا سکتا تھا. مجبوراً یہ ہوا کہ پھر ان دو جج صاحبان نے, جو آج دو خط لکھنے والے جج صاحبان شامل ہیں, انہوں نے اپنے ہائی کورٹ کی رولز کو, روایات کو, قانون کو خلاف ورزی کرتے ہوئے ویب سائٹ کے اوپر وہ فیصلہ جاری کر دیا جس کے مطابق وہ کیس عمران خان صاحب کے خلاف خارج ہو گیا. اور 10 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی آر او نے یہ اس بات کی تردید کی کہ ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. تو ان جج صاحبان کی پولیٹیکل اپروچ ٹو ڈرائیو اے پولیٹیکل نیریٹو, اٹ از ایڈمیٹیڈ, اٹ از ہسٹوریکل. اور پھر دوسری بات جو آپ اعتراض کر رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لیٹر لکھا, آئین میں, آئین پاکستان کا جو آئین ہے, پاکستان کا جو قانون ہے, اس میں کہیں یہ بات پرووائڈیڈ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی جج, اس کو اگر اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا تو وہ کسی اپنے چیف جسٹس کو خط لکھے گا, بلکہ آئین میں اور ججز کے حلف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کاروائی کرے گا, وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرے گا. اور اگر وہ اتنی ضرورت نہیں رکھتا تو پھر اس کو ہائی کورٹ کا جج رہنے کا اختیار نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے تیسرا سوال کیا کہ آپ نے پرائم منسٹر کو بلا کے بیٹھ لیا جن کے اوپر چارج شیٹ ہے, بھائی آپ کون ہوتی ہیں یہ بات کہنے والی کہ ابھی یہ چارج ہے؟ ابھی تو یہ ایک بیانیہ ہے, بالکل جھوٹا بیانیہ تحریک انصاف کا, جس طرح کے ساکم نثار جیسے ٹنگ ججوں نے بنایا تھا, جس طرح عظمت سعید جیسے ٹنگ ججوں نے بنایا تھا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں وقت سے پہلے ایک منتخب بندے کو کہنے والے کہ آپ پرائم منسٹر کے اوپر چارج لگا رہے ہیں, جبکہ وہ ایک سال پہلے کا واقعہ ہے. اس میں تو کون سے انٹیلیجنس افسر ملوث ہے؟ وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے پوچھ کر تو نہیں گیا تھا؟ اگر وہ گیا ہے کسی جج کو کرنے کے لیے, تو میں اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ پروپگیٹ کر دیتے ہیں کہ ایک چارج لگ گیا, ایک ہوا لگ گیا, ایک پرابلم بن گئی, اور وہ جو ہے وہ جج صاحبان کو انٹیلیجنس نے کچھ کر دیا. ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ ساری زندگی خود بکنے کے لیے تیار بیٹھے رہے ہیں, ये मैं और जलील साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारी हाई कोर्ट्स में रोजाना की ये प्रैक्टिस है, तजर्बे की बात है कि हम हाई कोर्ट्स के उन जजेस को जानते हैं वो बिकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमने माजी के अंदर बड़ी जिद्दोजहद करके एक करप्ट जज को सुप्रीम कोर्ट से निकाला है, वो कौन था? वो अमरांडू था। उसके फैसले क्या थे? अमरांडू थे, सारे गैर कानूनी फैसले थे, लेकिन वो इमरानिज्म करता था तो उसको भी तो गलत कहे ना। आखिरी जो बात आपने कही कि हमने पिछले साल बहुत सारी वीडियोस देखी, हमारा इस बात के ऊपर बिलीव है कि वो सारी वीडियोस झूठी हैं, जाली हैं। तहरीक इंसाफ एक फितने की जमात है, उनको एक आर्ट आता है सोशल मीडिया के ऊपर चीज बेचने का। वो किसी दूसरे मुल्क की वीडियो उठाते थे, उसको अपनी करके प्रोपगेट करते थे, वो चल जाती थी। आज के दिन तक अगर किसी के साथ कोई जेन्युइन ज्यादती हुई भी है तो वो उसकी FIR दर्ज करवाए, पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही चले। अगर किसी को पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं है तो वो पाकिस्तान छोड़ दे।
ठीक, पाकिस्तान वो FIR दर्ज कराए, अरशद शरीफ बेचारे की तो FIR आज तक कोई दर्ज ना करा सका।
अरशद शरीफ के कातलों को लाए ना, इमरान खान।
सर जी, आज मैं जलील साहब आप जवाब दे दीजिएगा, आज आपकी हुकूमत के लोग जनाब ख्वाजा साहब खुद मुंह से बोल रहे हैं कि बाजवा साहब ने कितना इंटरफेयर किया था, कैसे उन्होंने सफेद 26 पर्चे उनको भेजे थे कि जिताओ
ना इमरान खान साहब।
सर जी, लानत भेजती हूँ मैं इमरान खान के ऊपर, मैं लानत भेजती हूँ, 7 दफा लानत भेजती हूँ इमरान खान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान खान, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान।
रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं
हम, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। डोंट टेक एवरीथिंग टू इमरान खान, आप लोगों ने इमरान खान को प्रॉब्लम बना लिया है। मियां साहब, आपकी और कोई, आप लोगों की, आप हर बात को ना इमरान खान की तरफ लेके जाने हैं, और उस चक्कर के बीच में आपने इस दरख्त को अपने तने से काट के रख देना
है। अच्छा, इसमें आपका एक मेरी गुजारिश है, आपने शुरू में बड़ी एक दुरुस्त निशानदेही की कि जजेस में ग्रुपिंग है, वकला में ग्रुपिंग है, और मियां दाऊद साहब इससे कतन इनकार नहीं कर सकते। और आज जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी हाजिर सर्विस जज साहबान है, हर एक की पेशानी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जज, इसकी लाइकिंग क्या है, इसकी डिसलाइकिंग क्या है। और ये जो आसमा जहांगीर साहब वाला ग्रुप था, अब उस ग्रुप को आसन भून साहब का ग्रुप का नाम दिया गया है, और उसका जो मुखालिफ ग्रुप है या उसका जो मुकाबला कर रहा है वो है हामिद खान का ग्रुप, और हामिद खान साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ के साथ।
इसी तरह अब आप देखिए कि मियां साहब ने जो सफाई पेश की है हुकूमत की या एजेंसियों की या उन 6 जजों को जो रगड़ा दिया है, मैं समझता हूँ अब ये मामला सब जुडिस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कल से बकायदा समाज का आगाज शुरू करेगी, और इसमें अब देखना ये है कि आया सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच यानी फुल कोर्ट इसके ऊपर बनाने के लिए कोई फैसला कर पाएगी, या जो मुझको एक और इम्कान नजर आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कि बेंच की तस्कीर के ऊपर कोई एतराज आ जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, उसको बहुत सारे सियासी हलके, वकला की एक अक्सरियत और इंटेलेक्चुअल जो तबका है पाकिस्तान का, उसने उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कम अज कम चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। अब 2 सूरतें हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई ऐसा आर्डर जारी करेगी जैसा कि धरना केस में उन्होंने कहा कि एक कमीशन बनाया जाए, और कमीशन के उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी खुद तय कर दिए और टाइम फ्रेम के दे दिया कि इसको 2 माह के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये क्या आया, ये जो धरना है जनरल फैज हमीद के कहने पर किया गया था, ये इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। आजकल में इसकी जो रिपोर्ट है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, वजीर आजम पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। मेरी गुजारिश ये है और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही एक फैसला जारी करेगी इस केस में, 6 जजेस के केस में जो जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से हाईकोर्ट से है, कि क्या वो भी एक इसी तरह का कमीशन बनाएगी और उस कमीशन को ये हदायत जारी करेगी कि आप अपनी फाइंडिंग हमें दें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को दें, और बाकी जो हसास अदारे हैं उनको भी एक एक कापी अरसाल करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन इसमें बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, देखना ये होगा कि क्या 6 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के रूबरू हैसियत एग्रीव पर्सन के पेश हो पाते हैं या नहीं, या आया वो अपना एफिडेविट बयान हल्फी दे पाएंगे कि हमारे साथ ये ये प्रेशर हम पे पड़ा, हमारी फैमिली को इस तरह तंग किया गया, या हमें कोई टेलीफोन कॉल के जरिए कहा गया कि आपने ये फैसला ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। मैं समझता हूँ कि ये एक पंडोरा बक्स खुल जाएगा और इस पंडोरा बक्स में बहुत सारे लोग जो है वो नंगे हो जाएंगे और ये कहा जाएगा कि इस मामले तो हम सब नंगे हैं, चले इस मामले पे आप मट्टी डाल दी जाए।
दलील भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी शराफिया ने आज तक सूद का निजाम और इस्लामी शरई निजाम अगर नाफिज नहीं ना होने दिया तो देर इज अ रीजन। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने चार शादियों की मर्दों को इजाजत दी है, मगर कोठों पे जाना और औरतों के साथ गैर जरूरी ताल्लुकात रखना। एक टेरी ऑन वाइट को तो आप लेके बैठ गए, मगर पता नहीं कितनी लड़कियां हैं उस बाजार के बीच में जिनको वल्दियत नहीं मिलती और उनके वालिद बड़े बड़े लोग हैं।
लेके बैठे आप मिस आप फैक्ट्स को मिस कोट कर रही हैं। टेरियन व्हाइट को लेकर बैठे, टेरियन व्हाइट के केस को लेके बैठे।
अच्छा सॉरी, माय अपोलॉजीज, आप उस केस को लेके बैठे हैं, मगर वही ना कि एक जो भी केस है एनीवेज। तो मेरा मतलब यह है कि पाकिस्तान में आज तक शरई लॉ, इसलिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो कहा इसलिए क्योंकि इन्हीं वडेरों ने वो लॉ लेके आना है, और अगर ये वडेरे वो लॉ लेके आ गए तो हर आदमी संसार होगा, हर आदमी जो है वो। मैं गलत हूँ?
एग्रीड।
ठीक, अच्छा, तो यही आपके वडेरे ही हैं जो इस्लामी कवानीन नहीं आने देते, जिसकी आड़ जो मर्जी समझ लें। यही इसमें आपके नेक लोग भी आते हैं, इसमें आपके वो लोग भी आते हैं। वेरी सैड कि हम हर चीज को इमरान खान के लिए लेके आते जाते हैं। मैं खुदा को हाजर नाजर जान के कहती हूँ, और मैं अपना रोजा बिल्कुल जाए, मेरी किसी एक इंसान के साथ फेवर नहीं है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान है। एंड ऑफ कोर्स एक माँ को बाज औकात अपने बाज बच्चों को स्नब करना पड़ता है, बाज बच्चों को हाईलाइट करना पड़ता है। घरों के बीच में जो पॉलिटिक्स है वो इसी तरह से हुआ करती है, मगर मुल्क के बीच में हमने इमरान खान को एक मतलब सिकनिंग हद तक अपने सर के ऊपर सवार करने के बाद हम सही चीज को भी सपोर्ट करने के कायल नहीं है। एनीवेज मुझे
जब मुआशरे के अंदर एक बुराई बहुत ज्यादा हद तक फैल जाती है तो फिर उसको उसकी शिद्दत के साथ ही उसका इलाज करना पड़ता है। दिस इज नॉट सिकनिंग, ना किसी ने उसको सर के ऊपर सवार किया। पाकिस्तान में डेंगू फैल गया था तो सारे लोग डेंगू की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि डेंगू लोगों ने सर पे सवार कर लिया था। कोरोना फैल गया पूरी दुनिया के अंदर तो लोग दुनिया कोरोना के खिलाफ इकदाम कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये कोरोना लोगों ने सर पर सवाल किए? ये एक फितना है, ये एक तयशुदा तरीके के तहत पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। ये जर्नैलों ने जनरल पाशा ने 2011 में लॉन्च किया, इसको 2014 में जनरल जहीरुल पाशा ने तहरीक इंसाफ को इमरान खान को पाला, फिर 2018 के अंदर जनरल फैज ने, जनरल बाजवा ने, साकिब निसार जैसे जजों ने इस फितने को इक्तदार में लेके आए। तो इस फितने को कवर करने के लिए अब उतनी शिद्दत के साथ इकदाम भी करने की जरूरत है और गैर मामूली इकदाम करने की जरूरत है।
अब आप समझते हैं कि ये फितने को अल्टीमेटली 2018 में इम्प्लांट कर दिया था जनाब बाजवा साहब ने। डू यू प्रपोज एनी पनिशमेंट फॉर बाजवा साहब? क्योंकि आज आपके ख्वाजा आसिफ साहब ओपनली आगे ये लफ्ज कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने जो किया था नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए किया।
फैज साहब, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब, जनरल पाशा साहब, हर वो जर्नैल, हर वो जज जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को डीरेल करने के लिए इकदाम किए, जिसने पाकिस्तान के आइन के साथ छेड़छाड़ की, उसको आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आर्टिकल 6 के तहत सजा देनी चाहिए। दिस इज ओपन एंड शट क्लेम, नॉट फ्रॉम टूडे बट फ्रॉम लास्ट 10 to 20 years सिंस मी एंड जलील रहमान साहब इन जर्नलिज्म। हमारा 20 साल से ये मुतालबा है कि इन जर्नलों के खिलाफ इकदाम करी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी फैलाई हुई गंदगी को, तो आप नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, इमरान खान साहब को जो इनके बेनिफिशियरी हैं उनको छोड़ दें और जर्नैलों के खिलाफ जो है कंपेन चलानी शुरू कर दें, और जर्नैलों के इस तरह के हलफ की खिलाफवर्जी करने वाले जर्नैलों की आड़ में आप पूरी फौज को बुरा भला करने शुरू कर दें।
सर, मैं तो फौज को मैंने आज तक कभी फौज को बुरा नहीं कहा। टोरंटो सुन रहा है मेरे बारे में, टोरंटो में लोगों ने सीआरए तक को लेटर लिखा कि आईएसआई इसको पे करती है, मेरे लिए हराम है, बट आई सपोर्टेड आईएसआई। यहाँ पे लोग 770 पे जब कॉल करके आर्मी के बारे में कुछ करते थे, हम फोन नहीं थे लिया करते थे, बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते थे। मगर आज जब ये इमरान खान ने इतना जरूर किया कि ही इज द मैन, उसने ओपनली आके ब्लेम किया, यस एवरीबडी इज नाउ टॉकिंग अबाउट दिस,
उसने ओपनली आके पाकिस्तान को توڑنے کی کوشش کی, اس نے اوپنلی آ کے یہ کیا, کلیم نہیں کیا, یہ تو ہم سارے جانتے ہیں. عمران خان نے کوئی نئی بات کی, پاکستان کی فوج جو ہے وہ اقتدار کے اندر آ کے مداخلت کرتی ہے, یہ کوئی نئی بات ہے.
یہ تو سب چار چھ جنرلز ہیں, آپ جو امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں, آپ ان کے اثاثہ جات کو دیکھیے گا. ہم فوج کو برا نہیں کہتے. جی دلیل الرحمان صاحب, آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میاں داؤد صاحب نے آرٹیکل 6 کے تحت یہ مطالبہ یا ان کی رائے ہے کہ پاکستان میں جو ایسے سیاستدان ہیں جو ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے. تو آپ دیکھیں آرٹیکل 6 کے تحت کیا مقدمہ چلا, اس میں خان عبدالولی خان کے خلاف کیس چلا, اس میں وہ بری ہوئے. یہ پھر لاسٹ جو مقدمہ چلا ہے وہ تھا جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ چلا, اور ان کو اس موقع پہ پھانسی دی گئی جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. اس کا کیس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید 8-10-15 سال بعد وہ کوئی اور سپریم کورٹ آئے گی, وہ جج دوبارہ بیٹھیں گے ریفرنس لے کے, اور بعد میں وہ فیصلہ یہ دے دیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جس میں وہ ایک اسپیشل بینچ بنا تھا جس میں جسٹس شاہد کریم صاحب تھے, اور وہ انہوں نے جو فیصلہ دیا جنرل مشرف کے بارے میں وہ بالکل حقائق کے منافی تھا, وہ تو سزا بنتی ہی نہیں تھی. جنرل مشرف نے جو کیا بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف کے کیا. تو میں ان کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق پاکستان میں کیا جانا ایک انتہائی مشکل اور ناممکن کام ہے. اس کی بجائے جمہوریت کو فروغ دیا جائے, شفاف الیکشن کرائے جائیں, اور جس کا مینڈیٹ ہو اگر اس کو حکومت دے دی جائے تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ ہمارا
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس کو مینڈیٹ ہوگا اس کو حکومت دی جائے گی. کیونکہ وی آر آل پاور ہنگری پیپل ان پاکستان, اور جس کی حکومت ہوگی اس کو دی. آج میں تو بلکہ میرے بڑا طلعت حسین کے ساتھ پروگرام تھا, اور ان کا خواجہ آصف صاحب کا, انہوں نے اوپنلی کہا نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر زیادتی یا ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا اس میں اصل تو ایک یا دو یا تین جرنلز انوالو تھے. آپ نے مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے جنرل کو آپ کٹہرے میں لے کے آ سکے, آپ لے کے آ سکیں گے؟ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بعض وہ کیسز ڈیل کیے جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, ہی واز ناٹ سپوز ٹو جج. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟
یس.
کیسا کیس ہے جس میں ان کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا تھا مثلاً؟
جلیل رحمان صاحب آپ ذرا کور کریں, کیونکہ یہ جو ہے نا پاکستان کے جرنلسٹ بڑے اسپیشل ہوتے ہیں حقیقت میں. ایسے کیسز شاذیہ جی آپ بھی آ جاؤ یہاں پہ. دیر ور کیس جس میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس ہیئرنگ میں نہیں شامل ہونا چاہیے تھا. جی جلیل رحمان صاحب آپ شامل ہوں گے.
دیکھیے ابھی یہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے اور رات 12 بجے جو عدالتیں کھولی گئیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کا اپنا فیصلہ تھا کہ آدھی رات کو عدالت بلا لی جائے؟ آدھی رات کو جو عدالت لگائی گئی, نہیں نہیں, اس میں اس بینچ کی تشکیل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں نہیں بیٹھے, اور اس میں اور جو بہت سارے جائز صاحبان تھے وہ کیوں نہیں بیٹھے, اور اس طرح کے بہت سارے فیصلہ جاتے ہیں. میں یہ کوئی گھر کی چھپی بات نہیں کہ جہاں پہ انٹرسٹ کا کانفلکٹ ہوا ہے تو وہاں پہ فیصلے بدل دیے گئے
ہیں. بہرحال میاں صاحب, میرا خیال ہے میاں صاحب فل ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہیں. میاں صاحب میری
آپ آخری بات,
جی جی,
یہ جنرل اسلم بیگ صاحب کی ریکارڈ پہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ اسمبلی بات کرنے جا رہی تھی تو میں نے اس فیصلے کو ریورس کر دیا تھا. تو وہ بھی تو جج تھے, جج تھے تو پھر پورے لاجا بینچ تھا سپریم کورٹ کا.
ایک فیصلہ غلط تھا, ایک بینچ کی کانسٹیٹیوشن غلط ہے, وہ اس میں نہیں بیٹھے. آپ جلیل الرحمان صاحب, میں اور آپ, ہم دونوں عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں, ایک ہی کیس میں ایک پوچھتے ہیں. آپ کا نقطہ نظر اور ہوگا, میرا نقطہ نظر اور ہوگا, ہم دونوں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟
شاذیہ جی میری ایک ایسوسیٹ بھی,
اچھا اسی بات کو لے لیں میاں صاحب,
یہ وہ کانفلکٹ ہو گیا ہے تو بیٹھے کیا بات کر رہے
ہیں؟ میاں صاحب آج آپ کی باتیں سن کے مجھے ایسے لگا ہے کہ وی مسٹ گیو اپ دس کنٹری. میں تو آئی ہیو گیون اپ آن دس کنٹری. کہ آپ لوگ پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ غلط کو غلط کہا جاتا تھا, اب غلط کو غلط کہا نہیں جاتا.
پاکستان کی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے, اسی ملک کے لیے کام کریں. آپ گیو اپ کر دیں, ہم نہیں گیو اپ کریں گے. हम नहीं गिव अप करेंगे, हम इसके साथ लड़ेंगे।
मेरी एक एसोसिएट भी शामिल हो रही है।
गिव अप तो आप नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे पंजाबी के अंदर एक मुहावरा है, अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को दे। देखे ना मुल्क में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हार्वर्ड से, बोस्टन से, येल से, स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं। पहले जी भुट्टो साहब आ जाते हैं, फिर भुट्टो साहब की बेटी आ जाती है, फिर उनके जी दामाद आ जाते हैं, फिर अब उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में है, अब वो उनकी जो बहन है आसिफा वो आ गई है, शरीफ खानदान जो है उसका सारा का सारा डायनेस्टी चलती चली जा रही है। आपने इंडिया की तरफ देखा कि कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस को बनाने वाले नेहरू साहब जो हैं, नेहरू साहब की फैमिली का एक भी बंदा, दे आर पार्ट ऑफ कांग्रेस, लेकिन वो अब फेस ऑफ कांग्रेस नहीं है। आपको पता है कि उन्होंने फेस ऑफ कांग्रेस बनाया किसको है सर? उन्होंने एक दलित को, मलिक अर्जुन खरजे को कांग्रेस का फेस बनाया है। इमरान खान साहब जो है उससे बड़ी नफरत है हम सारों को, या आप उसे समेत जो है, अगर आप ये कहना चाहते हैं ठीक है उसकी बात है, लेकिन एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो उसने तोड़ने की कोशिश की थी ना जनाब। अब जो है आप बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद माँ बहन, ये कब तक चलेंगे? और इस मुल्क में कोई और पढ़ा लिखा नहीं है बंदा जो इस मुल्क को लीड करेगा, जो इस मुल्क को लीड करेगा। और आपके इंटरेस्ट देखें, आपके जर्नैलों के पास 50-50 जो है जमीनें हैं, हर चीज के अंदर आपने एक जर्नैल को बिठाया हुआ है, उसको हेड बनाया हुआ है, उनके स्कैंडल्स आते हैं उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। आपको सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं वो मिलते हैं पॉलिटिशियंस, उनको आप पकड़ के आप कहते हैं जी इनके एहतसाब करें, फिर आपकी अदालतें जो है उनके एहतसाब भी नहीं करती हैं, फिर आपके जो है वो लाडले आ जाते हैं। सर आप कहते हैं बड़ी उम्मीद है,
मोस्ट करप्ट
है। अच्छा तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है, उसमें फिर आप कहते हैं जी हमें मुल्क से बड़ी उम्मीद है।
इन्हें इन्हें बड़ा गिला है कि जी आप लोग अपना तजिया पेश करना शुरू कर देते हैं। ये जो
जी
मियां साहब
पाकिस्तान से बाहर बैठ के ना, पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये जर्नैलों के खिलाफ बात करना, इन जजों के बात करना, इस तरह के लेक्चर लुक्चर झाड़ना ना, ये बड़ी आसान और
नहीं नहीं सर, मैंने मुशर्रफ साहब के जमाने में भी काम किया हुआ पाकिस्तान में, मेरे बारे में आप पूछ लीजिएगा। द नेशन के अंदर मैं काम करती थी, फ्रंट पेज में मेरी खबर छपती होती थी।
चलिए अब सुने उसकी बात।
हमने मुशर्रफ साहब के जमाने में मुल्क में रह के काम किया हुआ सर, और जो गलत चीज होती थी उसको हम जरूर लिखते थे।
बात सुन ले,
हाँ जी बताए आप।
आके बैठ के और जाके एक जो है लेक्चर झाड़ना शुरू कर देते हैं, इंडिया की मिसाल देके पाकिस्तान को बुरा भला कहने शुरू कर दे, या अगर ऑक्सफोर्ड से अगर बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग आए हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान सौंप दें? व्हाट दैट इज मीन,
इट मीन्स कि वो ज्यादा पढ़े लिखे जाहिलों से, जिनसे जिनके जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं।
इसको बंद करें,
वो जाल वो लोग हैं जो उनको जाल कह रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जैसे भी हैं वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं।
चलिए चलिए ठीक है, चले सर ठीक है, मैंने आपकी बात
सुनी। जाहल के जाहल वो है जो बाहर बैठा है, उसको तकलीफ है कि उसका फैलाया हुआ फितना जो है वो इक्तदार के अंदर कोई नहीं है।
ठीक सर ठीक सर ठीक सर बिल्कुल सर।
जो है आप बड़ा फैशन करके जर्नैलों को बुरा भला करें, हम आज के दिन तक जर्नैलों को बुरा कहते हैं। आज भी जो जर्नैल पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व है हम उसकी मजम्मत करते हैं। आज भी जो जर्नैल सिविलियन इदारों में बैठे हुए हम उसकी मजम्मत करते हैं। आप आए ना पाकिस्तान, आके इसी दबाए दबंग लेजे के साथ आकर कहें मैं देखूं कि आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। बाहर बैठ के बातें करने बड़ी आसान है।
इसलिए मैंने आपकी बात से जो कंक्लूजन मैं ले रही हूँ, आपका दिल चाहता है कि the whole country must, there is nobody eligible for any post, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अब जैसे इसहाक डार साहब हैं, उनको वजीर खजाना से भी थोड़ी खुनस हो गई है, तो ये इनके खानदान के लोग भी हसन नवाज और हुसैन नवाज आ गए हैं, उनके पास पोजीशंस होनी चाहिए। तो बाकी सारे जो हैं वो जो मर्जी जाएं, सो द ऑल पोजीशंस मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय वन फैमिली।
शरीफ फैमिली की नहीं है, सारी की सारी पंजाब कैबिनेट शरीफ फैमिली की नहीं है, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट शरीफ फैमिली के नहीं है, सिंध के अंदर सारे शरीफ फैमिली के नहीं है, केपीके के अंदर भी तो बात करें ना आपा, करें हिम्मत।
ओ भाई मैं पंजाब से हूँ, मैं इस वक्त
बात से जवाब दीजिएगा। अब दूसरी पॉइंट चलते हैं,
आप लोगों से बहस करना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप केपीके को लेके आ रहे हैं। जी जलीलुर रहमान साहब, मेरा नहीं ख्याल, मैं मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना, आई डोंट नो,
मैं मियां साहब की
तवज्जो,
ये जो मौरूसी सियासत है ना,
आई हैव गिवन अप मियां साहब।
मियां साहब
मौरूसी
जी जलील साहब आप बात करें,
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मियां साहब, मरूसी सियासत की हम सबको इसको डिस्करेज करना चाहिए, राइट पर्सन फॉर द राइट स्लॉट आना चाहिए। अब देखें ये जो मरूसी सियासत है, जो मरूसी जो कारोबार है, ये तो हाईकोर्ट में भी आ गया। वाले साहब जज थे हाईकोर्ट के, बेटा हाईकोर्ट का जज बन गया और बेटे का बेटा फिर वकील बन गया, वो मुस्तकबिल का जज बनने की तैयारी कर रहा है। तो आप ये कह रही हैं या शादिया ये बात कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान में ये जो मरूसी सियासत है इसका खात्मा होना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस मुल्क को इस्तेहकाम देना चाहते हैं, जो इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो इस मुल्क को एक मुआशी कुवत बनाना चाहते हैं, वो लोग कोई भी लोग हैं, किसी भी सियासी जमात है, वो आगे आए, इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम दें, इस पाकिस्तान को डॉलर माफिया से निजात दें, इस पाकिस्तान का दिफा मजबूत करें, इस पाकिस्तान में जो गरीब बिजली गैस पेट्रोल के हाथ को मरने उनको कोई सुपर चांस मिले। ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ।
क्या मरियम औरंगजेब जो है वो शरीफ फैमिली से बिलोंग करती है? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? अच्छा। के मुल्क की
ओह माय गुडनेस, वेरी गुड।
नहीं 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 नहीं
कुडोस टू यू,
मैं छोड़े परे बच्चे, अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह आपको पाकिस्तान मुबारक करे।
ऋषि सुनक जो है सर, ऋषि सुनक जितने पढ़ी लिखी है बताए जरा।
नहीं नहीं कोई बात नहीं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं, ओके लीव इट लीव इट, चलिए लीव इट, इट्स नॉट इट्स नॉट
फिर पिछली की बात है। अलीमा खान को इत्तेदार देते फिर सारे खुश है,
नहीं
पिंकी पीरनी बेटियों को इत्तेदार देते फिर बहुत खुश है, पिंकी पीरनी की सारी कजनों को इत्तेदार देते फिर दुरुस्त है, लेकिन शरीफ फैमिली में इसहाक डार को वजारत दे दी है वो गलत है। ये ना इस तासुब से बाहर निकले, जब बात करनी है तो दिल गुर्दे के साथ सच बोले, मुनाफ़त ना करें।
अच्छा ऐसा है कि जलील जलील साहब, मैं आपसे बात करूंगी, आप बात कीजिए।
मेरी एक आखिरी बात है
जी, आप बात
देखें, इसहाक डार साहब पाकिस्तान के कम से कम दो बार तो वजीर खजाना रहे,
सही।
अभी जो उनकी मुआशी और इकतसादी और माली पॉलिसियां थी उनके बारे में जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, शब्बर जैदी साहब हैं, उनका उनकी ये राय है कि उनकी पॉलिसियां मुल्क के लिए कामयाब नहीं थी। अगर बात है अभी उनको वजीर खारजा बनाया गया है और जो कॉमन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें फिर उनको शामिल कर लिया गया है, तो क्या आप ये भी चाहेंगे कि एक ऐसा वजीर खजाना जो पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर सका माली मामला में, मुआशी मामला में, उसको दोबारा एक मौका दिया जाए ताकि ये जो डॉलर अब 280-285 का है ये फिर शूट अप कर जाए और पाकिस्तान इकॉनमी एकदम से धड़म से नीचे गिर जाए? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक थिंक, मेरी बात सुन रहे, अगर एक थिंक, मेरी ये गुजारिश है अगर एक थिंक टैंक हो, एक एक्सपर्ट हो इकॉनमी के फाइनेंस के, वो सारे बैठ के मिल बैठे सर जोड़ लें और पॉलिसी बना के निकले कि ये पॉलिसी है,
हमने भुगता नहीं है। अब आप बात सुनिएगा, मुदाखलत न कीजिएगा, तो शौकत जैसा हमने भुगता नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने जो इस मुल्क की तरफ की और टेक्नोक्रेट्स को लेके आया उनको हमने भुगता नहीं है। अभी 2016
ठीक है, आप ये चाहते हैं कि भाई जो भी करे वो करे, ठीक है जी बात, ठीक है। मैं सर मैं जिंदगी में ना तो अपनी जिंदगी को खराब करना चाहती हूँ इस पॉलिटिक्स की खातर, मैंने कब्र में अपना हिसाब देना,
ठीक है
जी साहब। 2016 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर 2016 के अंदर जब महंगाई थी कम थी तब इसहाक डार वजीरे खाना था ना, जब डॉलर कम था तब इसहाक डार वजीरे खाना था
सर। ना महंगाई कल कम थी ना आज कम है, अगर पाकिस्तान में तब भी महंगाई थी तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, आज भी महंगाई है तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। मैं अगर आज भी चीजों की कीमत जा रही है, कुछ हमारे किरदार IMF और कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, दुनिया जहान में महंगाई है, एंड दैट्स इट पीरियड फिनिश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट दोज इंटरनेशनल फैक्ट्स। आपने बड़े अच्छी तरह से क्लियर कर दिया कि इस मुल्क की फेट पे काबिज होना चाहिए एक ही फैमिली को, वी एग्री, क्योंकि अगर तो मैं आपसे आर्ग्यू करूंगी ना तो झगड़ा है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू रूइन माई सेल्फ। आपने जो कहा वी बिलीव इट,
मेरी बड़ी बहन एक बात तो सुने, ये मुझे और आपको, हम दोनों को क्या अपने अपने नुक्ता नजर बयान करने का हक नहीं
सर जी? सौ मैंने तो आपके, मैंने आपसे कहा था या अपना किसी नु कर ला या आप किसी का हो, द फर्स्ट डे वी टॉक मगर मुझे आज महसूस हुआ है कि मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती. सो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव यू नो मैंने बो डाउन किया है कि आप सही हो मैं गलत हूँ. अल्लाह पाकिस्तान का हामी होना मैं, और विद रिस्पेक्ट सर विद रिस्पेक्ट
आपा आपको बो डाउन नहीं करना चाहिए.
मैं
दोनों
नहीं सर फिर अगर अगर हम बहस करते रहेंगे ना तो देर इज नो एंड मगर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ने मेरे साथ आपके साथ हम सब के साथ एक चीज लगाई है और वो है जमीर. और कुरान में इस जमीर का बार 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 तज़करा है. वी हैव टू कीप आवर कॉन्शियस अलाइव टू रियलाइज कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक व्हाट इज राइट इन योर आईज आई डू नॉट वॉन्ट टू एंड अप इन झगड़ा एंड लड़ाई. ठीक है जी आपकी हर बात दुरुस्त है. मैं मानती हूँ मैं अपनी आकबत को नहीं खराब.
ऐसी बात नहीं है. जब तक हम दोनों हम सारे लोग आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे एक दूसरे का मुख्तलिफ नुक्ता नजर नहीं सुनेंगे तो हम
मेरी जान के टोटे हम ऊपर से लेके नीचे तक डिवाइडेड हैं. वी आर सो बैड डिवाइडेड आई स्वेयर टू गॉड. और अगर आपको मैं अपने दिल की कैफियत बताऊं ना फिर आप मुझे कहेंगे एक औरत है रो दी. अल्लाह का शुक्र है कि एक औरत घर को संभालती है एक औरत घर को जोड़ती भी है. अल्लाह ने ये उसको दिया हुआ है ठीक. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी उतना बैड नहीं देखा था जितना मैंने. अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक जमाने में आई थी उनकी नंगी तस्वीरों को जहाजों से गिरा दिया गया था. कौन सा दौर था ये. देर इज समबडी हु हैज सोन दीज थिंग्स. और मैं खुदा गवाह है मुझे कैनेडा में भी ऑप्शन एक दफा मिली थी लॉन्ग अगो तकरीबन 24 साल पहले. आई नेवर वॉन्टेड टू गेट इन टू द पॉलिटिक्स. मैं जो कर रही हूं मैं इतनी मस्त हूं उसमें इतनी खुश हूं कि मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं. मगर मेरा दिल दुखता जरूर है. मेरा दिल दुखता जरूर है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम कहते हैं हम हिपोक्रेट लोग हैं. हमारे लीडर्स आर हिपोक्रेट हमारे ब्यूरोक्रेट्स आर हिपोक्रेट. हम बड़े फकर से कहते हैं मेरी पता जो वो एक रखेल थी उसकी बेटी मेरी बेटी से उसकी शक्ल मिलती है. मगर एक तरफ हम कुरान पढ़ते हैं हम कहते हैं जी माफी मांगोगे ये है ना तहज्जुद की रातें की कौन सी रातें हैं लैलतुल कदर की रातें हैं अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा. दैट्स व्हाट वी आर. कंक्लूड कर दें आप दोनों को कंक्लूड. और मैं एक बात बच्चे बताती हूँ मेरा कोई आपसे इख्तलाफ नहीं. आई जस्ट लव पाकिस्तान.
अपा सिर्फ एक लास्ट कमेंट. हमें इस प्रोग्राम में जो भी डिस्कशन है ना उसको जातियात पर ले जाने की बजाय पर्सनलाइजेशन लेने की बजाय.
आई लव यू बेटा. मैंने बिल्कुल पर्सनलाइज नहीं किया. मुझे गम सिर्फ ये कुरान में एक लफ्ज है कि बाज़ुकात कुरान की आयात को भी
सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो गेस्ट को अपनी बात नहीं मुकम्मल करने देते.
जान मेरी तूने सारी बातें मुकम्मल की है.
आप मुझे बात मुकम्मल कर ले फिर आप कुरान सुना लीजिएगा. आपका हक है आपका प्रोग्राम है आपका फर्ज बनता है. मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो एक हर मजहब का असूल है हर दुनिया के कानून का असूल है. इस इंसानियत की इख्तरा जो है वो उस आजादी इजहार राय के ऊपर बुनियाद करती है. तो उस बात को सिर्फ उस हद तक लेना चाहिए उससे ज्यादा जाके पर्सनल लाइक और डिसलाइक्स में ना जाइएगा.
मैंने आपको
एक आखिरी बात मियां साहब मैं आपकी इजाजत से पेश कर रहा हूं कि इमरान खान के ऊपर जो चार्जेस हैं आजकल चल रहे हैं 200 के करीब मुकदमात बन गए हैं इससे ज्यादा संगीन इल्जाम खान अब्दुल वली खान पे थे. उसकी सियासी जमात को बैन कर दिया गया और ये कहा गया कि ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है. ट्रायल हुआ और ट्रायल में वो सारे इल्जाम खत्म हो गए और उन इल्जाम को खत्म करते हुए खान अब्दुल वली खान को बरी कर दिया गया. अगर तल्ला केस पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में रिपोर्टेड केस है. उसके बाद जितने हाई ट्रीजन के केसेस चले उनमें कोई नतीजा आज तक सामने नहीं आया. मेरी ना आपा की ना आपकी हमारी किसी के साथ हमदर्दी नहीं है. हम सिर्फ पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क एक मुस्तकम मुल्क देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि राइट पर्सन ऑन द राइट स्लॉट पे हो.
मेरे समेत हम सारे बद्दयांती पता क्या करते हैं जब हम एक गलत वाक्य के ऊपर गलत मिसाल का हवाला देते हैं. आप मुझे बताएं खान अब्दुल वली खान ने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया था
ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਉਸਕੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪਰ ਬਾਈ ਦੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਮੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਆ ਉਸਕਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸ ਕੋ ਮਿਲਾ ਉਸਕੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕੌਣ ਹੈ
ਉਸਕੀ ਜੋ ਕਹਤੇ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸਕੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਖੇ ਉਨਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਮੇ ਜੀਤ ਗਏ
ਚਲੇ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਕੇ ਦੇਨਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮੁਤਕਾਸਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਔਰ ਆਪਕੀ ਪੇਟ ਕੋ ਕਬਰ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਝੇ ਔਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ ਅਗਰ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਂਡ ਅੱਲਾਹ ਦੀਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਰ ਨੋਵੇਅਰ ਆਜ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੀ ਹੂੰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ